पुरियाई वली। इरज गराई बयान करते हैं कि 1976 की बात है और स्पोर्ट्स क्लब चैंपियनशिप के मुकाबले हो रहे थे। पहली पोजीशन लाने वाले को नकद इनामात के अलावा कौमी टीम में शमूलियत हासिल होती थी। इब्राहिम की तैयारी अपने औच पर थी, उसका मैच देखने वाला फौरन इस बात की तायद कर देता था। सारे कोच कह रहे थे कि साल 74 किलोग्राम के वजन के ग्रुप में इब्राहिम का कोई हरीफ नहीं है। मुकाबले शुरू हो गए और यके बाद दीगरे इब्राहिम ने कुश्तीबाजों को गिराना शुरू कर दिया। 4 मैच लड़ने के बाद इब्राहिम सेमीफाइनल में पहुंच गया। इब्राहिम काफ़ी पॉइंट की बर्तरी से मैच जीत जाता था। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यकीन करो, इस साल हमारे क्लब से एक जवान इब्राहिम नेशनल टीम में जगह बना लेगा। सेमीफाइनल में एक जाने माने और मशहूर कुश्तीबाज को शिकस्त फाश देकर बड़ी मजबूती से फाइनल में पहुंच गया। उसका आखिरी हरीफ मिस्टर महमूद था, जो उसी साल बैनुल अक्वामी आर्मी चैंपियनशिप में भी चैंपियन बन गया था। फाइनल मैच शुरू होने से पहले मैं पवेलियन में इब्राहिम के पास गया और कहा, मैंने तुम्हारे हरीफ के मैच देखे हैं, ये बहुत कमज़ोर है इब्राहिम जान, खुदा के लिए ज़रा ध्यान से खेलना और अच्छी तरह कुश्ती लड़ना, मुझे यकीन है कि साल तुम नेशनल टीम के लिए मुंतखब हो जाओगे। इब्राहिम का कोच उसे ज़रूरी हिदायत दे रहा था और इब्राहिम अपने जूते के फीते बांध रहा था, और फिर ये दोनों लोग मैट की तरफ चले गए। मैं जल्दी से दौड़कर तमाशाइयों में बैठ गया और इब्राहिम फर्श पर चढ़ गया। इसके साथ ही इब्राहिम का हरीफ भी दाखिल हुआ, लेकिन रेफरी अभी तक नहीं आया था। इब्राहिम आगे बढ़ा और मुस्कुराहट के साथ अपने हरीफ को सलाम किया और हाथ मिलाया। उसके हरीफ ने उससे कुछ कहा जो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन इब्राहिम ने अपने सर को हाँ में हिलाया और फिर उसके हरीफ ने हॉल की गैलरी में बैठे हुए तमाशाइयों के दरमियान किसी तरफ इशारा किया। मैं भी पीछे की तरफ मुड़ा और देखा कि एक बूढ़ी औरत हाथ में तस्बीह लिए ऊपर वाले जबूदरे पर अकेले बैठी हुई है। मैं ये तो नहीं समझ सका कि उन्होंने क्या कहा और क्या किया, लेकिन इब्राहिम ने बड़ी बुरी तरह कुश्ती शुरू कर दी। वो सिर्फ दिफा कर रहा था और बेचारा इब्राहिम का कोच इस कदर चिल्लाता और हिदायतें दे रहा था कि इसका गला सूख गया और आवाज़ बैठ गई, जैसे कि इब्राहिम कोच की चीखें और मेरा शोर सुन ही नहीं रहा था और सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहा था। इब्राहिम के हरीफ ने, जो कि पहले ही बहुत सहमा हुआ था, जुर्रत पैदा करके हमले करना शुरू किए और इब्राहिम भी बड़ी बेफिक्री से दिफा करने में मसरूफ था। रेफरी ने पहली वार्निंग और फिर दूसरी वार्निंग भी इब्राहिम को दे दी और आखिरकार इब्राहिम हार गया और उसका हरीफ 74 किलो वजन पर चैंपियन बन गया। जब रेफरी इब्राहिम का हाथ ऊपर कर रहा था तो इब्राहिम इतना खुश था जैसे कि वो खुद ही चैंपियन बन गया हो। उसके बाद दोनों कुश्तीबाजों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इब्राहिम का हरीफ, जो कि खुशी से जोर जोर से रो रहा था, नीचे की तरफ झुका और इब्राहिम के हाथ चूमे। अब दोनों कुश्तीबाज हॉल से बाहर आ रहे थे। मैंने चबूतरे से नीचे छलांग मारी और बड़े गुस्से में इब्राहिम के पास आकर चिल्लाया और कहा, अरे ओ अकलमंद इंसान, ये कैसी कुश्ती थी। इसके बाद मैंने गुस्से में इब्राहिम के बाजू पे एक जोर से घूंसा मारते हुए कहा, तुम्हें कुश्ती नहीं लड़नी होती है तो पहले ही कह दिया करो और हमारा भी वक्त जाया मत किया करो। इब्राहिम ने बड़े आराम से हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा लालची मत बनो भाई। इसके बाद फौरन आ गया और अपने कपड़े बदले और अपना सर झुकाकर चला गया। मैं गुस्से के मारे दरो दीवार पर घूंसे मार रहा था, एक कोने में बैठा और तकरीबन आधे घंटे के बाद जब जरा सुकून मिला तो उठकर चल दिया। स्टेडियम के दरवाजे पर अब भी भीड़ थी और इब्राहिम का हरीफ अपनी माँ, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खड़ा था। ये सभी लोग खुश थे। अचानक उस शख्स ने मुझे बुलाया और मैंने वापस पलट कर बड़े गुस्से में कहा, जी। वो मेरे पास आया और कहा, तुम इब्राहिम के साथी हो ठीक। मैंने गुस्से में कहा, बोलिए। उस आदमी ने बगैर किसी मुकदमे के कहा, भाई तुम्हारा दोस्त बड़ा दिल वाला है, क्या इंसानियत है इसमें। मैंने मैच से पहले इब्राहिम से कहा कि मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि मैं तुमसे हार जाऊंगा, लेकिन भाई जरा ख्याल रखना, मेरी माँ और मेरे भाई ऊपर चबूतरे पर बैठे मेरा तमाशा देख रहे हैं, कुछ ऐसा करो कि हम शर्मिंदा ना हों। इसके बाद कहा, तुम्हारे दोस्त ने तो फिदाकारी की हद कर दी, तुम्हें नहीं मालूम मेरी माँ कितनी खुश है। इसके बाद वो रोने लगा और कहा, मैंने हाल में ही शादी की है और मुझे इस मुकाबले के नकदी इनाम की सख्त ज़रूरत थी, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं कि मैं किस कदर खुश हूँ। हैरत से मैं अंगुष्ठ बदंदान रह गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहा, मेरे दोस्त, अगर मैं भाई इब्राहिम की जगह होता तो इतनी सारी सख्ती उठाने और मुश्किल प्रैक्टिस करने के बाद हरगिज ये काम न करता। इस तरह की फिदाकारी इब्राहिम साहब जैसे अजीम लोग ही करते हैं। और बस मैंने उस जवान से खुदा हाफिजी की और खुशो खुर्रम बूढ़ी औरत पर नीम निगाह डालते हुए चल दिया। रास्ते भर मैं इब्राहिम के इस इकदाम पर गौर करता रहा। इस तरह की फिदाकारी अक्ल से बिल्कुल मेल नहीं खाती। दिल में सोचा कि जब पुरियाई वली को ये बात मालूम हुई कि उसके हरीफ को हाकिम शहर सता रहा है और इस मैच में चैंपियन बनने की सख्त ज़रूरत है, तो उसने जानबूझकर अपने आप को हरा दिया। लेकिन मुझे इब्राहिम की वो सख्त और मुश्किल प्रैक्टिसें याद आईं जो उसने इस अरसे में की हुई थीं, और फिर उस बूढ़ी औरत की मुस्कुराहटें और उस नौजवान की खुशी और मुसर्रत। अचानक मैं रोने लगा। शहीद के दोस्त बयान करते हैं कि तेहरान में शदीद बारिश हो रही थी और 17 शहरियों नामी सड़क पानी से भर गई। सड़क के किनारे कुछ बूढ़े लोग सड़क पार करना चाह रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इतने में इब्राहिम वहां पहुंचा और देखते ही देखते उसने अपना शलवार जानुओं तक ऊपर किया और एक एक करके सारे बूढ़ों को अपने कंधे पर उठाकर सड़क से पार ले गया। इब्राहिम इस तरह के काम अक्सर वो बिस्तर करता था और उसका मकसद अपने नफ्स को शिकस्त देने के अलावा और कुछ नहीं था। ये काम ख़ास तौर पर उस वक्त ज़्यादा अंजाम देता था जब वो दोस्तों के दरमियान ज़्यादा मशहूर हो जाता था। हम लोग इब्राहिम के साथ चल रहे थे। ये मौसम गर्मा की एक सपहर की बात है और चलते चलते कूचे में पहुँचे जहाँ कुछ बच्चे फुटबॉल खेलने में मशगूल थे। हम लोग चल ही रहे थे कि एक बच्चे ने फुटबॉल पर शॉट मारा और फुटबॉल सीधे इब्राहिम के मुँह पर लगी। फुटबॉल इतनी ज़ोर से लगी कि इब्राहिम को दर्द की शिद्दत से कुछ देर ज़मीन पर बैठना पड़ा और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। मुझे ज़बरदस्त गुस्सा आया। मैंने बच्चों की तरफ देखा तो सब लोग डर के मारे भाग रहे थे कि कहीं हम उनको न मारें। इब्राहिम ने बैठे बैठे अपना हाथ बैग में डाला और बैग से अखरोट की थैली निकाली और बच्चों को बुलाने लगा। ए बच्चों, कहाँ भाग रहे हो? आओ, अखरोट ले लो। इसके बाद वो थैली फुटबॉल गोल के किनारे रख दी और चल दिया। मैंने ये देखकर ताज्जुब से पूछा, भाई इब्राहिम, ये कौन सी अजीब हरकत है? उसने कहा, ये बच्चे डर गए हैं, जानबूझकर तो नहीं मारा। फिर अपनी बात बदल कर गुफ्तगू का मौजू ही बदल दिया, लेकिन मुझे मालूम था कि अजीम लोग अपनी जिंदगी में इसी तरह का रवैया अपनाते हैं। हम लोग किश्ती क्लब में थे और प्रैक्टिस करने की तैयारी कर रहे थे कि इब्राहिम भी दाखिल हुआ और कुछ मिनट बाद एक और दोस्त भी आया। उसने दाखिल होते हुए कहा, इब्राहिम जान, तुम्हारी शक्लो सूरत और पर्सनैलिटी काफ़ी जाजिब और दिलचस्प बन गई है। जब तुम रास्ते पे चल रहे थे तो दो लड़कियां तुम्हारे पीछे चल रही थीं और मुसलसल तुम्हारे ही बारे में बातें कर रही थीं। फिर जारी रखते हुए कहा, जो तुमने नई नई पैंट शर्ट पहनी है और हाथ में वर्जिश का बैग भी है तो जाहिर है कि तुम दूर ही से खिलाड़ी लगते हो। मैं इब्राहिम को देख रहा था, वो सोच में डूब चुका था, परेशान था, जैसे कि उसे ऐसी बातों की तवक्को ही नहीं थी। दूसरे दिन मुझे इब्राहिम को देखते ही हंसी आ गई। लंबी शर्ट और ढीला ढाला पैंट, वर्जिशी लिबास को बैग के बजाय एक थैला प्लास्टिक में लिए आ रहा है। उस दिन के बाद से वो उसी तरह क्लब में आया करता था। दोस्त लोग उसे कहते थे, अरे भाई, तुम कैसे इंसान हो? हम लोग क्लब इसलिए आते हैं कि हमारी शक्ल व सूरत खिलाड़ियों जैसी बन जाए, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत जिसामत और पर्सनैलिटी के बावजूद ये कैसे कपड़े पहनकर आते हो? इब्राहिम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था और अपने दोस्तों से ये भी कहता था, अगर तुम खुदा के लिए वर्जिश करोगे तो ये इबादत होगी, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत इसके अलावा कुछ और होगी तो तुम नुकसान उठाओगे। हम लोग फील्ड में फुटबॉल खेलने में मसरूफ थे। अचानक मैंने इब्राहिम को पवेलियन के किनारे पर खड़े देखा। दौड़कर उसके पास गया, सलाम किया और खुश होकर कहा, अरे वाह, तुम और यहाँ? उसके हाथ में एक मैगजीन थी, उसे ऊपर उठाकर कहा, तुम्हारी फोटो इसमें छपी है। खुशी से मेरे पर निकलने लगे। मैं आगे बढ़ा और उसके हाथ से मैगजीन लेना चाहा। उसने अपना हाथ पीछे की तरफ करके कहा, एक शर्त है। मैंने कहा, जो भी शर्त है वो कबूल है? उसने कहा, जो मैं कहूँगा वो कबूल करोगे? उसने कहा, हाँ भाई, कबूल है। उसने मैगजीन मुझे दे दिया। बीच वाले सफ़े पर मेरी एक बड़ी फ़ोटो छपी हुई थी। उसके किनारे पर लिखा हुआ था, एक नया नौजवान फुटबॉल चेहरा और मेरी काफी तारीफ की हुई थी। मैं पवेलियन के पास बैठा और दोबारा मैगजीन का ये सफा पढ़ा। मैंने इस मैगजीन की खूब वर्क गर्दानी की और फिर सर उठाकर कहा, इब्राहिम जान बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बहुत खुश किया। अच्छा ये बताओ तुम्हारी शर्त क्या थी? उसने कहा, जो भी हो कबूल है ना? मैंने कहा, हाँ भाई कहो तो सही। थोड़ा ठहर कर बोलने लगा, अब तुम फुटबॉल मत खेलो। ये सुनकर मैं लकड़ी की तरह खुश्क हो गया। अपनी आंखें छोटी करके बड़ी हैरत से मैंने उससे पूछा, क्या मतलब मैं दोबारा फुटबॉल ना खेलूं? ये तुम कैसी बात कर रहे हो, अभी तो मेरी शोहरत शुरू ही हो रही है। कहा, नहीं मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि तुम बिल्कुल फुटबॉल मत खेलो, बल्कि मतलब यह है कि तुम स्पेशल फुटबॉल खिलाड़ी बनने के चक्कर में मत पड़ो। मैंने कहा, क्यों? मेरे आगे बढ़कर मैगजीन को अपने हाथों में लिया और मेरी फोटो मुझे दिखाकर कहने लगा, अपनी इस रंगीन तस्वीर को देखो जिसमें तुम खिलाड़ी लिबास यानी चड्डी और टी शर्ट में हो। ये मैगजीन सिर्फ मेरे और तुम्हारे ही हाथों में नहीं बल्कि पूरे मुल्क के हाथों में है। मुमकिन है कि बहुत सारी लड़कियों ने इस फोटो को देखा हो या देखेंगी। इसके बाद कहा, मैं बात तुमसे इसलिए कह रहा हूँ कि तुम मस्जिद के पाबंद जवानों में से हो, वरना मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मेरी नज़र में पहले अपने एतकादात को मजबूत करो और उसके बाद स्पेशल फुटबॉल खिलाड़ी बनने के चक्कर में दौड़ो ताकि तुम्हें कोई मुश्किल पेश ना आए। फिर कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे काम है, खुदा हाफिजी करके चला गया। मुझे हैरत से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बैठा और इब्राहिम की बातों पर गौर व फिक्र करने लगा। ऐसे आदमी से जो हमेशा मजाकिया बातें करता और आमियाना बोली बोलता था, ऐसी बातें सुनना बाइद था। ये बात तब मेरी समझ में आई जब मैंने देखा कि मस्जिद के बाद नमाज गुजार जवान के जिनके एतकादात अभी पुख्ता न थे, स्पेशल फुटबॉल खिलाड़ी बनने की तलाश में गए और आहिस्ता आहिस्ता आसपास के माहौल में खोते गए और फिर अपनी नमाजें भी छोड़ दी। यदुल्लाह। सैयद अबुल फजल काजमी बयान करते हैं कि इब्राहिम बाजार में एक दुकान पर काम करता था। एक दिन मैंने इब्राहिम को ऐसी हालत में देखा कि हैरत से हक्का बक्का रह गया। उसके कंधों पर चीजों से भरे हुए दो बड़े बड़े डब्बे थे जो उसने दुकान के सामने अपने कंधे से उतार दिए। जब उसका काम खत्म हुआ तो मैं उसके पास गया और सलाम किया और फिर कहा, इब्राहिम साहब ये काम आपके लिए अच्छा नहीं है, ये तो मजदूरों का काम है ना कि तुम्हारा। उसने एक नजर मुझ पर डाली और कहा, काम करने में कबाहत नहीं है बल्कि बेकारी बुरी चीज है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ खुद मेरे लिए अच्छा है, से मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये मुझे मगरूर होने से बचा लेगा। मैंने कहा, अगर तुम्हें कोई इस तरह देखेगा तो अच्छा नहीं है, तुम एक खिलाड़ी हो वगैरह वगैरह, सारी दुनिया तुम्हें पहचानती है। इब्राहिम ने हंसते हुए कहा, अरे भाई हमेशा ऐसा काम करो कि अगर खुदा देख ले तो खुश हो जाए न कि लोग। हम कुछ लोगों के साथ बैठे इब्राहिम के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा एक दोस्त जो इब्राहिम को नहीं पहचानता था, इब्राहिम की फ़ोटो देखकर हैरत में पड़ गया और ताज्जुब से कहने लगा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इसका नाम इब्राहिम ही है? मैंने भी ताज्जुब से कहा, और नहीं तो क्या, क्यों क्या बात है? उसने कहा, सुल्तानी मार्केट में मेरी पहले एक दुकान थी और ये इब्राहिम साहब हफ्ते में दो दिन मार्केट के सामने खड़े होकर कंधे पर रस्सी डालकर दुकानदारों का सामान लाता और ले जाता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, आप मुझे यदुल्लाह कह सकते हैं। कुछ अरसे बाद मेरा एक दोस्त हमारी दुकान पर आया हुआ था तो उसने उन्हें देखते ही ताज्जुब से कहा, तुम इस आदमी को जानते हो? मैंने कहा, नहीं तो क्यों क्या बात है? उसने कहा, ये वॉलीबॉल और कुश्ती का चैम्पियन है, बहुत ही परहेजगार आदमी है, ये अपने नफ्स को शिकस्त देने के लिए ऐसा काम करता है। ये भी तुम्हें बता दूं कि ये नहायत ही अजीम इंसान है। इस माजरे के बाद फिर मैंने उन्हें कभी इस मार्केट में नहीं देखा। इस दोस्त की गुफ्तगू से मैं सोच में डूब गया क्योंकि ये कहानी मेरे लिए काफ़ी अजीबोगरीब थी। ने नफ्स के साथ इस तरह लड़ना अकल से मेल नहीं खाती। कुछ अरसे बाद मैंने अपने एक पुराने दोस्त को देखा, हम लोग इब्राहिम ही के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। उसने कहा कि इनकलाब से पहले की बात है कि एक दिन जोहर के वक्त इब्राहिम साहब हमें बुलाने आए और मुझे और भाई और दो और लोगों को रेस्टोरेंट पर ले गए। اب بہترین کھانے، کباب، سلاد، کولڈ ڈرنک وغیرہ منگوائی، ہمیں بہت مزہ آیا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا تھا۔ ابراہیم صاحب نے کہا کھانا کیسا تھا؟ میں نے کہا بہت مزیدار، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اس نے کہا صبح سے لے کر ابھی تک میں مارکیٹ میں دو دکانداروں کا سامان ادھر ادھر لے جا رہا تھا، اس لیے کھانے کا ذائقہ اس زحمت کی وجہ سے ہے جو میں نے پیسہ کمانے میں اٹھائی ہے۔ آیت اللہ مجتہدی کا مدرسہ۔ ایرج گرائی بیان کرتے ہیں کہ انقلاب سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ مارکیٹ میں کام کرنے کے علاوہ ابراہیم کسی اور کام میں بھی مصروف تھا، لیکن کسی کو اس سلسلے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، خود بھی کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا، لیکن اس کا اخلاق و کردار بالکل بدل گیا تھا۔ پہلے کے مقابلے میں اب ابراہیم زیادہ روحانی بن گیا تھا۔ صبح کے وقت ایک کالے رنگ کے شاپنگ بیگ میں کچھ کتابیں اٹھا کر لے جاتا تھا۔ ایک دن میں اپنی موٹر سائیکل پہ سوار تھا کہ سڑک پر اسے دیکھا تو پوچھا، ابراہیم بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اسے اپنی بائک پر بٹھایا اور راستے میں پوچھا، کچھ دنوں سے تمہارے ہاتھ میں یہ کالا شاپنگ بیگ دیکھ رہا ہوں، کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا کچھ نہیں، کتاب ہے۔ راستے میں وہ نائب السلطنت کوچے پر اترا اور خدا حافظی کی اور چلا گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ابراہیم تو یہاں کبھی کام نہیں کرتا، پس اسے کہاں جانا ہے؟ اس بات کی کھوج میں میں نے اس کا پیچھا کیا، دیکھا کہ ایک مسجد میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ چند جوانوں کے ساتھ بیٹھا اور اپنی کتاب کھول دی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دینی تعلیم پڑھنے لگا ہے۔ میں مسجد سے باہر آیا اور بوڑھے شخص سے پوچھا، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اسے آیت اللہ مجتہدی کا مدرسہ کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے حیرت سے اپنے ارد گرد دیکھا، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابراہیم ایک دینی طالب علم بن گیا ہے۔ دیوار پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث لکھی ہوئی تھی کہ زمین اور آسمان کے فرشتے تین لوگوں پر شب و روز طلب مغفرت کرتے ہیں، علماء، طالب علم اور سقی انسان۔ رات کو جب ہم لوگ پہلوان کلب سے باہر آ رہے تھے تو میں نے کہا، بھائی ابراہیم تم دینی تعلیم پڑھنے جاتے ہو اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ وہ اچانک میری طرف پلٹا اور تعجب خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ دن میں میں نے اس کا پیچھا کیا۔ آہستہ آہستہ کہنے لگا، کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ انسان اپنی عمر کو صرف کھانے پینے اور سونے میں برباد کر دے؟ میں رسمی طور پر طالب علم تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑا کچھ سیکھنے کے لیے جاتا ہوں اور دوپہر کے بعد بھی مارکیٹ میں کام کرنے جاتا ہوں، لیکن ابھی تم کسی سے کچھ مت کہنا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی تک ابراہیم کا معمول یہی کام ہوا کرتا تھا، لیکن انقلاب کی کامیابی کے بعد ابراہیم کی مصروفیات اس قدر زیادہ ہوئیں کہ پھر وہ اپنے معمول کے کام انجام نہیں دے پاتا تھا۔